चलिए आज बात करते हैं अर्थ, मून और सन की, इनके आपसी रिश्तों की और इनकी गतियों की, मतलब जैसा इस चैप्टर में समझाया गया है।
जी
कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर का एक तरह से रीकैप हो जाए, खास तौर पर रोटेशन, रेवोल्यूशन और इक्लिप्सिस पर।
कभी सोचा है कि दिन में अपनी छाया कैसे बदलती है? सुबह देखो तो लंबी, दोपहर में एकदम छोटी, शाम को फिर से लंबी।
ये सिर्फ रोशनी का खेल नहीं लगता है ना?
ये तो हमारे ग्रह की बड़ी गतियों का इशारा है।
बिल्कुल, और ये गतियां समझना, अब देखिए, सदियों से कितना जरूरी रहा है। मतलब खेती के लिए मौसम की जानकारी हो या फिर आज के स्पेस मिशंस, सब इसी पर तो आधारित है।
यही तो हैं जो हमारे दिन, रात, मौसम और यहाँ तक कि इक्लिप्सिस मतलब ग्रहण जैसी चीजें तय करती हैं।
हाँ, तो सबसे पहले रोटेशन से शुरू करते हैं। ये क्या है? ये है पृथ्वी का अपनी ही एक काल्पनिक धुरी, मतलब एक्सिस पर घूमना, जैसे लट्टू घूमता है। और ये एक्सिस वो सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है पृथ्वी के ऑर्बिट के हिसाब से। कितना? करीब 23.5 डिग्री।
जी हाँ, लगभग 23.5 डिग्री। और पृथ्वी घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इसी रोटेशन की वजह से होता है दिन और रात। सीधी सी बात है, पृथ्वी का जो हिस्सा घूमकर सूरज के सामने आया वहां दिन हो गया, और जो हिस्सा दूसरी तरफ है वहां रात।
अच्छा,
और एक और मजेदार बात, जैसे हम चलती गाड़ी से बाहर देखते हैं तो लगता है ना कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, वैसे ही पृथ्वी घूम रही है, पर हमें लगता है कि सूरज, चांद, तारे, ये सब आसमान में चल रहे हैं। इसे कहते हैं एपरेंट मोशन।
हाँ, लगता है सूरज पूरब से उगकर पश्चिम में जा रहा है, पर असल में वो हम घूम रहे हैं। तो हमारा जो 24 घंटे का दिन है वो इसी सोलर डे पर आधारित है। ठीक है,
बिल्कुल, साइडीरियल डे भी होता है,
हाँ।
पर हाँ, हमारे रोजमर्रा के 24 घंटे सोलर डे वाले हैं।
ओके, तो ये तो हुआ रोटेशन, अपनी जगह पर घूमना। लेकिन पृथ्वी सिर्फ घूम ही नहीं रही, वो सूरज के चारों ओर एक लंबी यात्रा भी तो कर रही है। उसे रेवोल्यूशन कहते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, और ये यात्रा जिस रास्ते पर होती है, मतलब ऑर्बिट, वो एकदम गोल नहीं है, वो थोड़ा अंडाकार है, मतलब एलिप्टिकल।
अच्छा, अंडाकार, तो इसका मतलब पृथ्वी कभी सूरज के थोड़ा पास होती होगी, कभी दूर।
हाँ, पेरिहेलियन वो पॉइंट है जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, ये जनवरी में होता है, और एफीलियन जब सबसे दूर होती है, ये जुलाई में। एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन और करीब 6 घंटे।
ओह, वही 6 घंटे, इसीलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, फरवरी में एक दिन ज्यादा।
एकदम सही, पर यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि मौसम इसलिए बदलते हैं क्योंकि पृथ्वी सूरज के पास या दूर जाती है, पेरिहेलियन या एफिलियन की वजह से।
हाँ, ये तो लगता है कि पास होंगे तो गर्मी, दूर तो सर्दी।
नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मौसम बदलने की मुख्य वजह पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर वो 23.5 डिग्री का झुकाव है, और साथ में उसका रेवोल्यूशन।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, जब पृथ्वी का कोई हेमिस्फेयर, मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध, सूरज की तरफ झुका होता है, तो उसे सूरज की किरणें ज्यादा सीधी और ज्यादा देर तक मिलती हैं, तो वहां गर्मी होती है, दिन लंबे होते हैं। और उसी समय जो दूसरा हेमिस्फेयर सूरज से दूर झुका होता है, वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं कम देर के लिए, तो वहां सर्दी होती है, दिन छोटे।
समझ गया, तो सारा खेल उस झुकाव का है, दूरी का नहीं।
और सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस भी इसी वजह से होते हैं।
जी हाँ, सोल्स्टिसेस यानी साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन, और इक्विनॉक्सेस जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं।
ये सब पृथ्वी के झुकाव और उसके रेवोल्यूशन के ही नतीजे हैं। और हाँ, इसी रेवोल्यूशन से हमें साल भर आसमान में अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस मतलब तारामंडल भी दिखते हैं।
वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं इक्लिप्सिस पर, यानी ग्रहण पर। ये कैसे होते हैं?
इक्लिप्सिस तब होते हैं जब कोई एक खगोलीय पिंड मतलब सन, अर्थ या मून किसी दूसरे की रोशनी को रोक देता है, उसकी छाया बनाता है। ये तभी होता है जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं।
और वो कमाल की बात जो है कि सूरज मून से 400 गुना बड़ा है, पर वो लगभग 400 गुना दूर भी है, इसीलिए हमें धरती से देखने पर दोनों का साइज आसमान में करीब करीब एक जैसा लगता है।
हाँ, ये एक अद्भुत संयोग है, एपरेंट साइज वाली बात, और इसी वजह से टोटल सोलो एक्लिप्स मुमकिन हो पाता है।
तो सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, तब होता है जब मून बीच में आ जाता है, सन मून अर्थ, है ना? ये न्यू मून अमावस्या को होता है।
बिल्कुल, सन मून अर्थ न्यू मून के दिन। इसके भी प्रकार हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स, जब चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। ये पृथ्वी की बहुत छोटी सी जगह अम्ब्रा क्षेत्र से ही दिखता है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जब चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ढकता है, ये पेनम्ब्रा क्षेत्र से दिखता है। और एक होता है एन्युलर इक्लिप्स, ये तब होता है जब चांद अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा दूर होता है, तो वो सूरज को पूरा नहीं ढक पाता और एक रिंग ऑफ फायर मतलब आग की अंगूठी जैसी दिखती है।
ओह, एन्युलर इक्लिप्स।
हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात मैं फिर दोहरा रही हूँ, सोलर इक्लिप्स को कभी भी नंगी आंखों से सीधे नहीं देखना चाहिए। हमेशा खास इक्लिप्स ग्लासेस या पिनहोल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें, आंखों को स्थायी नुकसान हो सकता है। बहुत जरूरी है ये।
बिल्कुल सही कहा, सुरक्षा सबसे पहले। अच्छा, तो ये हुआ सूर्य ग्रहण, अब लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। ये तब होता है जब अर्थ बीच में आ जाती है, सन अर्थ मून, और ये फुल मून पूर्णिमा को होता
है। और अच्छी बात ये है कि लूनर इक्लिप्स को देखना पूरी तरह से सुरक्षित है, आप बिना किसी उपकरण के देख सकते हैं।
अच्छा, ये सुरक्षित है, इसके भी प्रकार होते हैं।
हाँ, इसके भी प्रकार हैं। टोटल लूनर इक्लिप्स, जब पूरा का पूरा चांद पृथ्वी की सबसे गहरी छाया अम्ब्रा से गुजरता है, इस दौरान चांद अक्सर लाल या तांबे जैसा दिखने लगता है, उसे ब्लड मून भी कहते हैं।
हाँ, सुना है ब्लड मून के बारे में।
फिर होता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स, जब चांद का सिर्फ कुछ हिस्सा ही अम्ब्रा से गुजरता है। और एक होता है पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स, जब चांद सिर्फ पृथ्वी की हल्की बाहरी छाया पेनम्ब्रा से गुजरता है। ये अक्सर इतना हल्का होता है कि पता भी नहीं चलता।
तो ये ब्लड मून वाली बात दिलचस्प है, पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर ये सब अलाइनमेंट का खेल है, तो फिर हर न्यू मून को सोलर एक्लिप्स और हर फुल मून को ल्यूनर एक्लिप्स क्यों नहीं हो जाता?
बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मून का जो ऑर्बिट है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने का रास्ता, वो पृथ्वी के ऑर्बिट के तल प्लेन से थोड़ा सा झुका हुआ है, करीब 5 डिग्री।
ओह, तो वो एक सीध में नहीं है ज्यादातर समय।
हाँ, तो ये तीनों सन अर्थ मून ज्यादातर समय एक सीधी रेखा में नहीं आ पाते। ये खास अलाइनमेंट मतलब ग्रहण वाला अलाइनमेंट सिर्फ तभी होता है जब मून अपने ऑर्बिट पर उन खास बिंदुओं के पास होता है जिन्हें नोड्स कहते हैं। ये वो बिंदु है जहां चांद का रास्ता पृथ्वी के रास्ते को काटता है।
समझ गया, तो वो नोड्स वाला पॉइंट जरूरी है, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्टली अलाइन होना चाहिए। तो चलो संक्षेप में कहें तो, रोटेशन से हुए दिन और रात,
हाँ,
रेवोल्यूशन और एक्सिस के झुकाव से बदले मौसम,
बिल्कुल,
और सन अर्थ मून के खास अलाइनमेंट से हुए इक्लिप्सेस।
एकदम सही, और ये सिर्फ आप कह सकते हैं किताबों की बातें नहीं है, इनका सीधा असर हमारे कैलेंडर पर, हमारी खेती पर, मौसम की हमारी समझ पर, और ब्रह्मांड को हम कैसे देखते हैं, सब पर पड़ता है।
सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। सोचिए, अगर मून का ऑर्बिट झुका हुआ ना होता, बिल्कुल पृथ्वी के ऑर्बिट वाले प्लेन में ही होता, और हर महीने ग्रहण लगते, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, तो हमारी दुनिया, हमारा इतिहास, हमारी पौराणिक कथाएं शायद कितनी अलग होती है ना।
ये सोचने वाली बात है वाकई।